ओम शांति,
ओम शांति,
गुड मॉर्निंग। आप सबको देख करके बहुत खुशी हो रही है और खुशी के साथ साथ कमाई भी हो रही है, क्योंकि भट्टी करना भी कमाई है, सुनना भी कमाई है, सहयोग देना भी कमाई है। तो यहाँ तीन चार दिन आप बहुत भाग्य का खाता भरपूर करेंगे। इस यज्ञ की शुरुआत भी भट्टी से हुई और इसका अंत भी भट्टी से होगा। बीच में थोड़ा सा पीरियड सेवा का है, लेकिन हम कितनी भी सेवा करें, सेवा करने की ताकत तो भट्टी से ही आती है। इसलिए बाबा तो ये कहते हैं, बच्चे आप निरंतर भट्टी में हो। किसी ने भगवान से प्रार्थना की कि हे भगवान, मुझे ऐसा जीरो बना दो, मैं जिसके भी आगे लगूं वो 10 गुना हो जाए। तो जीरो बनना, आगे लगना माना लीडर बनना। तो लीडर को ऐसा जीरो होना चाहिए जो उसके पीछे चलने वाले 10 गुना हो जाए। ये तो आत्मा की बात है ना। लेकिन जब शिव बाबा आगे लग जाए तो फिर 10 गुना क्या, फिर तो पदम गुना हो जाते हैं। तो हम सबके आगे कौन लगा हुआ है? शिव बाबा। इसलिए हम सब पदम गुना जमा कर रहे हैं और हम भी बाबा से सीख रहे हैं कि हम भी जीरो बन जाएं। जो जीरो बनेगा वही हीरो बनेगा। तो जीरो बनना माना आत्म अभिमानी बनना। शिव बाबा को भी आत्म अभिमानी बच्चे प्यारे लगते हैं। देखो, दुनिया में ये जितने भी पौधे हैं जिनको फल लगता है या अनाज लगता है या दालें लगती हैं, कोई भी पौधा ले लीजिए, अपन रोज खाते हैं। मुझे तो एक दिन कैसे याद आई ये बात, मैं खिचड़ी खा रही थी तो उसमें एक कंकर आ गई। जैसे ही दांत के नीचे कंकर आई तो मैंने विचार किया कि ये कंकर कितना इरिटेट करती है आदमी को। है तो छोटी सी, शायद उसमें 1 ग्राम का भी 1/5 हिस्से जितना भार हो, लेकिन मनुष्य को कितना इरिटेट करती है। फिर मैंने सोचा कि इस खिचड़ी में जो चावल के दाने हैं या मूंग के दाने हैं, वो पैदा तो कंकरों के बीच में ही हुए, लेकिन जिनके बीच में वो पैदा हुए वो चीज हमको अच्छी नहीं लगती। हमको केवल चावल के दाने अच्छे लगते हैं, मूंग के दाने अच्छे लगते हैं, उनको जरा सी भी मिट्टी लगी हो तो हमको पसंद नहीं आता, इसको धुलाई करो, इसको झाड़ो, इसको पोंछो। तो मैं सोचने लगी, हम बाबा के बच्चे भी इस दुनिया की मिट्टी में ही पैदा होते हैं, शरीर भी मिट्टी का बना है, लेकिन भगवान को भी ये मिट्टी बिल्कुल पसंद नहीं है। वो भी कहता है झाड़ पोंछ करके फिर मेरे पास लेकर के आओ। जैसे दाने होते हैं ना, उसका छिलका भी उतार दो, झाड़ पोंछ के धुलाई करके फिर आदमी उसको एक्सेप्ट करता है। तो भगवान तो बहुत ऊंचा, तो वो भी कहता है ये जो आत्मा रूपी दाना है ना, इसको बिल्कुल झाड़ पोंछ के दे, अभिमान से न्यारा करके फिर मेरे पास लेके आओ, तो मैं उस पर दृष्टि डालूंगा। शरीर सहित कोई आ गया मेरे पास तो जैसे हमारे भी दांत के नीचे कंकर अड़कती है ना, भगवान को भी अड़कते हैं लोग, उसको पसंद नहीं आते। तो बिल्कुल आत्मा बन के बैठना है। हरेक कुटी के बीच में आत्मा है। और वैसे भी जो किसान होता है, शिव बाबा कहते हैं मैं बेहद का किसान हूँ, फसल काट करके अब घर ले जाने आया हूँ। तो किसान भी क्या करता है, भूसे को तो जला देता है और दानों को घर ले जाता है गाड़ी में डाल के। तो भगवान भी कैसा किसान है, भगवान भी यही काम करेगा ना। बाकी किसान इसी से तो सीखे, भूसा यहीं पड़ा रहेगा और दानों को घर ले जाएगा। और उसमें भी जो बढ़िया बढ़िया दाने, उनको सबसे पहले खेत में उगाता है। तो जो सबसे बढ़िया दाने होंगे उनको सतयुग में सबसे पहले उगाएगा, बाकियों की बारी नंबर वार आएगी। कोई दाना तो ऐसा होगा जो आया और गया, ऐसा भी होगा जो बहुत घटिया होती, उन पे क्यों मेहनत करेगा। तो हम सब आत्माएं बीज स्वरूप, बीज में बहुत ताकत भरी होती है। और जब वो बीज उगा दिया जाता है तो उसकी शक्ति का विस्तार हो जाता है और फिर बीज बन जाता है, तो सारी शक्ति उसमें समाहित हो जाती है। तो बाबा ने कहा 5000 साल आप विस्तार में रहे, अब आपका फिर से बीज बनने का समय आया है। बीज रूप बाबा के साथ हम बीज रूप आत्माएं हैं। और बाबा ने कहा बीज रूप स्थिति ही इच्छा मात्रम अविद्या की स्थिति है। और जो इच्छा मात्रम अविद्या है वही दूसरों की इच्छाओं को पूर्ण कर सकता है। तो दुनिया में तो लोग इच्छाओं से कामनाओं से भरे पड़े हैं, हमारे सामने भी आते रहते हैं। लेकिन बाबा ने कहा अगर आप बीज रूप स्थिति में हैं और इच्छा मात्रम अविद्या है तो आपको देखते ही उसकी मनोकामना पूर्ण हो जाएगी, दृष्टि पड़ते। अब इस पुरुषार्थ की जरूरत, तो इस पुरुषार्थ के लिए बार बार बीज रूप स्थिति का अभ्यास। यहाँ की कोई चीज दिखाई दे तो मन में क्या संकल्प लाएंगे, इससे बढ़िया चीजें तो सतयुग में है, कुछ काम हमें सतयुग के लिए छोड़ देने हैं, कुछ काम यहाँ करने हैं जो सतयुग में नहीं हो पाएंगे, और कुछ काम ऐसे हैं जो सतयुग के लिए पेंडिंग छोड़ देने हैं। तो जैसे यहाँ कौन सा काम होता है, अमृत वेले उठना यही होता है, सतयुग में तो होगा नहीं, तो वो यहाँ कर लेते हैं। 3-4 दिन पहले बाबा ने कहा सेवा 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 है, बाबा के दिल पे वही बच्चे चढ़ते हैं जो सेवा करते हैं। तो सतयुग में तो सेवा होगी नहीं, वो यहाँ कर लेते हैं। बाकी सतयुग में 36 प्रकार के व्यंजन होंगे वो वहां खा लेंगे, यहाँ व्यंजनों का संकल्प छोड़ देते हैं। और सतयुग में बहुत बढ़िया बढ़िया कपड़े होंगे पहनने के लिए, वो काम भी वहां जाके कर लेंगे, यहाँ उसको छोड़ देते हैं। सतयुग में खूब सोने को मिलेगा, यहाँ तो बाबा कहता है जो सो जाता है उसका भाग्य भी सो जाता है, तो यहाँ वो काम नहीं करने का, वो सतयुग में करेंगे। वहां सो भी लेंगे ना तो भी भाग्य सोएगा नहीं, वहां जागता ही रहेगा भाग्य। तो यहाँ क्या करना है उसकी लिस्ट बनाओ, यहाँ क्या क्या करना है। सतयुग में किसी की इच्छाएं पूर्ण नहीं करनी, वहां सबकी इच्छाएं पूर्ण है, यहाँ करनी है तो उसके लिए इच्छा मात्रम अविद्या बनना है, इच्छाएं नहीं रखनी, अच्छा बनना है। इच्छाएं तो बेलगाम होती है, और इच्छाओं पे लगाम तब लगती है जब आत्मा बन जाती है, आत्मा को कोई इच्छा नहीं। इसलिए देखो बाबा की मुरली में कभी स्लोगन में कभी वरदान में बार बार आत्मा का पाठ पक्का कराया जाता है। बहुत मीठा पाठ है ना ये, बहुत प्यारा पाठ है, बहुत मजा आता है जब बाबा कहते हैं आत्मा अभिमानी बनो, क्योंकि छोटी सी लाइन में सारा सार है। आपको पता है भारत का संविधान कितना बड़ा है और उसमें भी धाराएं ऐड होती जाती है, लेकिन हमारे बाबा का संविधान तो बहुत छोटा सा है, 4 पेज का। उसमें सतयुग में क्या होगा, कैसा राज्य होगा, सारा उस 4 पेज में आ जाता है। और उसका भी जो बेस है वो है आत्म अभिमानी स्थिति। बाबा कहती हैं, आप इस दुनिया में आए, हम सब आए, जैसे बूंद, यहां भी थोड़ी थोड़ी बारिश हो रही है, बूंद ऊपर से आती है ना तो कितनी स्वच्छ होती है, इसलिए बिंदु आत्मा में और बूंद में काफी सिमिलरिटी है। तो जब ऊपर से आती है तो लोग कहते हैं उस पानी को अगर कोई पी ले तो बीमार व्यक्ति ठीक हो जाता है। बरसात के पानी का इतना महत्व होता था पहले, आजकल तो क्या है एटमॉस्फेयर में भी कुछ केमिकल्स या कुछ गंदगी और कई ऐसी चीजें आ गई तो बूंद ऊपर से नीचे आते आते भी रास्ते में मैली हो जाती है। पहले उस पानी को रखते थे, लेकिन जैसे ही बूंद हमारे आंगन में आई तो आंगन की मिट्टी मिली, फिर आंगन से बह के बाहर गई, बाहर की मिट्टी मिली, फिर नाले में गई, बिल्कुल गंदी हो जाती है। तो आत्मा भी ऐसे ही जब ऊपर से आई तो बूंद की तरह से स्वच्छ थी, फिर जिस आंगन में उतरी उस आंगन का भाव स्वभाव उसमें मिला, फिर आंगन से बाहर निकल करके कहीं पढ़ने गई, नौकरी में गई वहां का, और फिर सारे समाज का असर उस पे आ गया। लेकिन देखो बूंद को स्वच्छ करने का तरीका क्या है, बूंद का भी रिसाइकल होता है, उसका रिसाइकल का तरीका क्या है, उसके ऊपर सूर्य की किरणें पड़ती हैं और बूंद स्थूल रूप से सूक्ष्म रूप में आ जाती है। स्थूल रूप है पानी, 2 मिनट बाबा को याद करेंगे, स्थूल रूप है पानी, ओम शांति। जो हम चर्चा कर रहे थे बूंद की, बूंद संग के रंग में बिल्कुल मैली हो गई, लेकिन उसको स्वच्छ करने का तरीका देखो कैसा है, ज्ञान सूर्य की किरणें पड़ी और बूंद ने सूक्ष्म रूप धारण कर लिया, अर्थात वाष्प रूप धारण कर लिया, और जैसे ही वाष्प रूप धारण किया तो उसका खिंचाव ऊपर की तरफ हो गया। जब तक बूंद थी, बूंद कभी ऊपर नहीं जा सकती, कितना भारीपन होता है उसमें, लेकिन ऊपर उड़ने का तरीका क्या है, सूक्ष्म रूप धारण किया और सूर्य की तरफ उसका आकर्षण हुआ, तो जो उसके संगी साथी थे वो सारे नीचे रह गए और सूक्ष्म रूप धारण करके ऊपर गई और फिर अपने मूल रूप में आ गई। तो इसी तरह से तो वो अपने मूल रूप में फिर से आ जाती। तो देखो बाबा ने हमको भी ऐसा ही तरीका सिखाया ना, जब तक आप इस स्थूल रूप में रहोगे तो आपके भी कितने संगी साथी हैं, देह के संबंध हैं, देह के पदार्थ हैं, पुराने स्वभाव हैं, पुराने संस्कार हैं, तो उनसे उनके साथ आप ऊपर कैसे उड़ोगे, उड़ ही नहीं सकते। तो बाबा ने भी तरीका बताया, स्थूल रूप से सूक्ष्म रूप में आ जाओ, और सूक्ष्म रूप में 2 रूप है, एक फरिश्ता रूप और एक आत्मिक रूप। तो जैसे ही हम फरिश्ते रूप में आते हैं, भाव स्वभाव संगी साथी सब पीछे छूट जाते हैं, कोई याद नहीं रहता, और जैसे ही आत्म अभिमानी स्वरूप में आते हैं सब संगी साथी जो बरसों के साथी थे जिनके साथ हम इतने रहे, एक सेकंड में हमसे पीछे छूट जाते हैं। और जैसे बूंद ऊपर उड़ गई, अपने मूल रूप में आ गई, ऐसे ही हम भी आत्मा बन के, फरिश्ते बन के ऊपर उड़ते हैं और अपने मूल रूप में आ जाते हैं। कितनी वर्षों की जो गंदगी थी सारी सेकंड में उतर जाती है। इसलिए बाबा ने कहा, जो आत्म अभिमानी स्थिति है वो निर्लेप स्थिति है। आत्मा निर्लेप नहीं है, आत्मा जो भी कर्म करेगी वो लेप छेप लगेगा, लेकिन आत्म अभिमानी स्थिति में हम जो भी कर्म करेंगे उसका लेप छेप बिल्कुल नहीं लगेगा। और इसलिए बाबा हर रोज मुरली में भिन्न भिन्न तरीके से हमें बताते हैं कि बच्चे ये शरीर कपड़ा है और ये भी चत्तियों वाला कपड़ा है। देखो तो कितनी चत्तियां, आजकल तो जन्मते ही चत्तियां लगने लगती। कपड़ा पुराना होके फटा करता था, अब तो ये नया ही फट जाता है, टांके और चत्ती और क्या क्या इसको लग जाता है। तो ये आत्मा का कपड़ा है और आत्मा इसको धारण करती है। और देखो आत्मा इसको धारण करती है, आत्मा उतनी की उतनी रहती है। कमाल ये है, इसलिए वो अजर भी है और अमर भी है, मरती भी नहीं है और उसको बुढ़ापा भी नहीं आता। जब हम एक साल के थे तो वो शरीर कहाँ गया, कहाँ गया, ढूंढो उसे। कई फोटो में तो हो सकता है, एल्बम में तो हो सकता है, और उस शरीर को जो कपड़ा पहनाया वो भी हो सकता है कहीं कोने में पड़ा हो, पर वो कहाँ गया। कहते हैं आत्मा है अमर और शरीर है मरण धर्मा। मरण धर्मा अर्थात मरना इसका धर्म है, तो ये अपना धर्म तो निभाएगा ना। कोई भी चीज अपने धर्म को नहीं छोड़ सकती। जैसे सूर्य का धर्म है चमकना, धरती का धर्म है स्थिर रहना, शरीर मरण धर्म है, मरना इसका धर्म है, ये उसे छोड़ नहीं सकता। तो जन्मते ही क्या करता है, अपना धर्म निभाना चालू कर देता है। एवरी डे एक पुराने शरीर की मृत्यु होती है और नए शरीर का जन्म होता है, एवरी डे, क्योंकि हर दिन इसमें परिवर्तन होता है। ये कल वाला शरीर आज नहीं, पर दिखाई नहीं देता। कमाल की बात ये, कोई दो चार साल बाद दिखाई दे तब तो हम कह देते हैं भाई तुम कुछ बदले बदले नजर आ रहे हो, पर रोज देखते हैं तो पता नहीं पड़ता। और खुद को भी तो रोज दर्पण में देखते हैं, पता पड़ता है हम बदल रहे हैं, पता नहीं पड़ता है, दूसरे लोग बताते हैं हाँ भाई तुम काफी बदल गए हो। कहते हैं बालू का कण देखना मुश्किल होता है, बालू का ढेर दिखाई दे जाता है, तो छोटा परिवर्तन नहीं दिखाई देता, वो इकट्ठा एकत्रित परिवर्तन होता है ना। 10 साल बाद देखा तो बदले हुए नजर आए, लेकिन ये परिवर्तन तो पल पल हो रहा है। और ऐसे बदलते बदलते देखो कितने बदल गए, 5 साल वाला शरीर कहाँ गया, 10 वाला कहाँ गया, 15 वाला कहाँ गया। लेकिन जब हम 15 साल के थे उस समय हम कहाँ पढ़ते थे, कौन हमारे मित्र थे, वो तो हमको याद है ना। तो वो याद किस में, वो तो आत्मा में। अगर आत्मा भी इसकी तरह से रंग बदलती तो उसकी भी पुरानी फाइलें डिलीट हो जाती, नई फाइलें आ जाती, वो भी सब कुछ भूल जाती, पर वो भूलती नहीं, उसमें सारी फाइलें पड़ी हुई, और अगले जन्म तक भी ले जाती है वो साथ में। इसलिए आत्मा का धर्म है अमृतत्व और शरीर का धर्म है मरना। अब जिसका धर्म ही मरना है तो उससे अटैचमेंट कैसी भाई, पता तो है ये अपना धर्म पूरा करेगा। इसलिए आज बाबा ने मुरली में कहा, क्या बन जाओ? मोहजीत। अम्मा मरे तो और बाप मरे तो, आगे तो बीबी शब्द आता था, आज मैंने ध्यान से पढ़ा बाप आया था। अम्मा मरे तो हलवा खाओ, बाप मरे तो, क्योंकि शरीर ही तो मरा, आत्मा तो मरी नहीं। तो फिर रोना किस लिए? बाबा ने कहा रोना प्रूफ, निशानी जो चार पांच बाबा ने बताई उसमें वो राजयोगी होगा, राज ऋषि होगा, सुखदेव होगा, किसी को दुख नहीं देगा, और फिर साथ में बताया किसी की मृत्यु हो तो कभी रोएगा भी नहीं। भारत में एक महर्षि रमण हुए, जब वो 12 साल की आयु में था तो उसके पिताजी ने शरीर छोड़ दिया, घर के लोग रोने लगे, तो बच्चे ने सोचा ये क्यों रो रही हैं भाई, क्लोज कर दो, बंद कर दो। तो घर के लोगों ने रोना चालू कर दिया, उसने पूछा भाई आप क्यों रो रही हो, तो बोला आपके पिताजी ने शरीर छोड़ दिया है। तो बच्चा घर से बाहर गया, तो पहले तो थोड़ा बरामदे आदि में घर से बाहर खुली जगह में रखते थे ना, तो वहां कपड़ा उड़ा रखा था, तो बच्चे ने कपड़ा उतारा और देखा और अंदर आके बोला रो मत, पिताजी तो बाहर लेटे हुए हैं। तो घर के लोगों ने कहा नहीं बेटा वो पिताजी नहीं है। तो बच्चा दोबारा गया और ध्यान से देखा, कान नाक नाक बिल्कुल पिताजी वाले ही। फिर अंदर आया, बोला मैं ध्यान से देख के आया हूँ, आंख भी वही है, कान भी वही है, नाक भी वही है, पिताजी ही है। तो कहा नहीं बेटा पिताजी नहीं है, वो पिताजी तो ऊपर चले गए। तो बच्चे के मन में आया मैं इतने वर्षों से एक ही बाप को देख रहा हूँ, आज ये दो बाप कैसे हो गए, एक नीचे रह गया और कहते एक ऊपर चला गया। अच्छा चलो दो भी हो गए, पर असली कौन सा है, नीचे वाला असली है कि ऊपर वाला असली? तो बच्चे ने पूछा पर कोई ने जवाब नहीं दिया, तो उसने घर छोड़ दिया, मैं ये जान के रहूंगा कि असली कौन सा है। तो एक मंदिर में गया, वहां रात को सोया, वहां प्रसाद पड़ा था, चींटियां आई थी, चींटियों ने शरीर को काटा, खून निकला। तो उसके मन में सवाल आया कि ये खून कौन से वाले में से निकला, जो ऊपर जाएगा उसमें से निकला कि नीचे रहेगा उसमें से निकला, क्योंकि बाप की तरह मैं भी दो हो जाऊंगा। तो मंदिर में भी किसी ने जवाब नहीं दिया, उसने मंदिर भी छोड़ दिया और घूमता रहा भटकता रहा। आखिर कितने वर्षों घूमने भटकने के बाद उसको मालूम पड़ा कि जो ऊपर जाता है वही असली होता है और जो नीचे रह जाता है वो तो नकली है, नीचे रहता है वो नकली है ना। तो हम जो रोज दर्पण में चेहरा देखते हैं वो असली को देखते हैं कि नकली को देखते हैं? इतने सालों से नकली को देख रहे हैं, नकली देखते देखते इतने बड़े हो गए, कमाल है। दुनिया में कोई नकली चीज दे दे तो उसी समय वापस करके आ जाते हैं, और यहाँ देखो नकली को रोज देखते हैं, रोज इसकी संभाल करते हैं, संवारते हैं, इसका श्रृंगार भी करते हैं नकली वाले का। और जो असली वाला है वो इसके पीछे बहुत गहरा छिपा पड़ा है। नकली चीज सामने रखी जाती है, जो कम कीमत वाली चीज होती है ना वो सामने रखी जाती है, और जो बहुत महंगी होती है ना वो अंदर छिपा करके रखी जाती है। तो आत्मा तो बहुत अमूल्य है ना, इसलिए वो इसके भीतर कई तहों के अंदर छिपाई हुई है, एक दो तह भी नहीं, बहुत गहरी छिपा रखी है, क्योंकि वो बहुत अमूल्य। युद्ध के मैदान में भी आप देखो जो छोटे सिपाही होते हैं वो आगे युद्ध करते हैं, जो कमांडर होता है ना उसकी कितनी सुरक्षा होती है, कई टुकड़ियों के बाद कहीं जाके कमांडर होता है, भाई कमांडर को नुकसान नहीं होना चाहिए। तो ये सब ऑर्गन्स फ्रंट में, लेकिन जो कमांडर है वो इनके पीछे कमांड देता है, ऑर्गन्स काम करती, इसलिए ये जो मुख है इसको हम कहते हैं ये मुखोटा है। किसी ने नर का मुखोटा लगा लिया और किसी ने नारी का मुखोटा लगा लिया, लेकिन मुखोटी के भीतर कौन है? आत्मा है। और मुखोटे का भी अर्थ क्या है? मुंह खोटा, खोटा मुंह, खोटा सिक्का होता है ना, चलता नहीं है वो बाजार में, ये भी खोटा मुंह है, कहीं नहीं चलता आत्मा के निकलने के बाद। इसे चला के देखो, कंधे पे ले जाओ बाजार में, कोई खरीद लो, कोई खरीद लो, खरीदेगा कोई? कोई नहीं खरीदेगा। और ही आपको कहेंगे हमसे कुछ पैसे ले ले पर यहां से चला जा, आपको जाने के पैसे देंगे, आने के नाम के पैसे नहीं देंगे। तो जैसे लोग खेलने के लिए मुखोटा लगाते हैं, मान लो मुझे ड्रामा में इंदिरा गांधी का रोल प्ले करना है तो मैं क्या करूंगी? इंदिरा गांधी का मास्क लगाऊंगी। झांसी की रानी का रोल प्ले करना है तो झांसी की रानी का मास्क लगाऊंगी। ऐसे इस रंगमंच पे रोल प्ले करने के लिए ये मास्क लगाना पड़ता है, इसको लगाए बिना रोल नहीं कर सकती आत्मा। और जब मास्क लगाती हैं तो पूरी तरह बदल जाते हैं हम, हमारे घर के लोग भी हमको नहीं पहचान पाते। अब कोई इंदिरा गांधी बना के बिठा कर दे भी, घर का व्यक्ति आए वो तो ढूंढता ही रहेगा, हमारी बहन जी कहाँ है, ये तो इंदिरा गांधी बैठी है, हमको हमारी बहन जी से मिला दो। तो देखो कितना परिवर्तन हो जाता है। तो ऐसे ही हम सभी बदल गए, मास्क लगाया। तो जो आत्मा ऊपर से उतर के आती है उसको पता ही नहीं पड़ता ये जो मेरे से पहले बैठे हैं ये भी मेरी तरह उतर के ही आए थे, और नई आत्मा उतर के आती हमको भी याद नहीं रहता कि ये भी हमारी तरह ही बन जाएगी, आज उतर के आई है, हम भी इसी की तरह आए थे। तो मास्क लगाने से सबका जो मूल रूप था वो इतना बदल गया, इतना बदल गया कि कोई किसी को पहचान ही नहीं रहा। फिर बाबा को आके बताना पड़ता है कि इस मास्क के भीतर तुम सब आत्माएं, और ये बात रोज पक्की करवानी पड़ती है। विवेकानंद जी एक बार विदेश में गए थे तो उनको किसी ने पूछा कि क्या आप हमें हिप्नोटाइज करने आए हैं, क्या आप हिप्नोटिज्म सिखाते हैं? तब विवेकानंद ने कहा था माया ने आपको हिप्नोटाइज तो पहले से ही कर रखा है, मैं तो आपको डीहिप्नोटाइज करने आया। तो माया ने हिप्नोटाइज करके हमको शरीर बना दिया, और अब बाबा क्या कर रहे हैं? उस हिप्नोटिज्म से बाहर निकाल रहे हैं, डीहिप्नोटाइज कर रहे हैं। तुम शरीर नहीं हो, तुम आत्मा हो, तुम अपने असली रूप को पहचानो, तुम आत्मा हो। और इसके लिए बाबा को कितनी मशक्कत करनी पड़ रही है, बाबा ने भी कहा ना, बाबा को कितनी मेहनत करनी पड़ती है पतितों को पावन बनाने में, नई दुनिया स्थापन करने में, यही तो मेहनत। तो जब आत्मा इस दुनिया में आती है तो शरीर नहीं कहता कि तुम मुझे धारण करो, आत्मा अपनी मर्जी से शरीर को धारण करती है। तो आत्मा हो गई मालिक, उसने धारण किया और शरीर को धारण किया, उसकी तो कोई मर्जी ही नहीं है, उसको तो जो मर्जी हांक ले, उसको तो एक हंकने वाला चाहिए। इसलिए ये जीवन पुरुष और प्रकृति का खेल है। पहले नाम किसका आया? पुरुष का। तो पहले जिसका नाम आया वो बड़ा है और बाद में जिसका नाम आया वो छोटा है। तो पहले है पुरुष आत्मा और फिर है प्रकृति। तो ये पुरुष की प्रॉपर्टी है प्रकृति, अर्थात आत्मा की प्रॉपर्टी है ये शरीर। उसने आते ही सबसे पहले प्रकृति ने उसको ये गिफ्ट दिया, प्रॉपर्टी दी, बिना प्रॉपर्टी के कोई क्या करेगा। तो ये पहली प्रॉपर्टी बॉडी मिली और बॉडी कैसी मिली, जैसा मालिक था उसको वैसी प्रॉपर्टी मिल गई, आत्मा जैसी थी वैसा उसको बॉडी मिल गया। अब इस बॉडी से वो अपनी शक्ति बढ़ा भी सकती है और घटा भी सकती है। जस्ट लाइक ए टैक्सी, ये टैक्सी है। अब एक व्यक्ति ने टैक्सी खरीदी 20 लाख की और उस टैक्सी से इतना कमाया 1 करोड़ रुपया कमा लिया और फिर उस टैक्सी का एक्सीडेंट हो गया, चूर चूर हो गई, तो उस आदमी को कोई दुख नहीं होगा। क्यों नहीं दुख होगा? क्योंकि मैंने 1 करोड़ कमाया, मैं 5 टैक्सी और खरीद सकता हूं, जाने दो, बेशक गई तो गई। लेकिन एक आदमी ने 20 लाख में टैक्सी खरीदी और उसको हर रोज कपड़ा भी मारता है, धुलाई भी करता है और गैरेज में खड़ी कर देता है, फिर निकालता है, फिर अच्छी सी सड़क पे 2-4 चक्कर लगवाता है और फिर गैरेज में खड़ी कर देता है कपड़ा मार के। आखिर एक दिन थोड़ा ही कहीं गया और अचानक ही जरा सी दूरी में ही दुर्घटना हो गई, तो वो उसको देख करके खुश होगा, उसको दुख होगा, कहेगा अरे अभी तो मैंने इसका सुख भी नहीं लिया था, इससे तो मैंने कुछ किया ही नहीं था, मेरी तो अभी नई की नई पड़ी थी और ये देखो मेरे तो 20 लाख पानी में चले गए, दुख होगा उसको। तो ऐसी जब आत्मा ऊपर से आती है तो इस रंगमंच पे कमाई कैसे करी, उसे एक टैक्सी मिलती है। तो जो व्यक्ति इससे पुण्य कर्म कर लेता है तो उसको हर रोज जमा खाता होता जाता है, तो जब ये जाएगा तो उसे कोई दुख नहीं होगा, वो कहेगा जाने दो, मैंने इतनी कमाई कर ली, इसके बदले मुझे सतयुग में बेस्ट टैक्सी मिलेगी। और जिसने इसको सेवा में लगाया नहीं, खिलाया, रोज इस पे कपड़ा मारा, रोज इसको सेंट लगाया, रोज इसको बढ़िया अच्छा कवर पहनाया, बिठाया, घुमाया, गैरेज में खड़ी कर दिया, एसी गैरेज वो भी, तो जब ये जाएगा तो क्या होगा, तब उसको दुख होगा, अरे मुझे जाना पड़ रहा है, अरे मुझे जाना पड़ रहा है, मैं क्यों जा रहा हूं। तो उसे छूटेगी नहीं ये जल्दी सी, अभी ना छूटे, भगवान कुछ दिन और, भगवान कुछ दिन और। लेकिन बाबा ने हम बच्चों को क्या सिखाया, दादी जानकी की एक बुक है ना, जियो तो कैसे और मरो तो कैसे, हाउ टू लिव हाउ टू डाई, जियो तो कैसे और जाओ तो कैसे। दादी एक्टिंग करके दिखाती है, सेकंड में संकल्प आया और आत्मा बैठे बैठे उड़ गई। दादी कहती है मैं या तो मुरली सुनते सुनते जाऊं, मेरा बहुत बड़ा सौभाग्य होगा। देखो अब्दुल कलाम जी कैसे गए, सबको मालूम है ना, लेक्चर कर रहे थे एक यूनिवर्सिटी में और लेक्चर करते करते बस आत्मा चली गई। जीवन भर के पुण्यों का फल व्यक्ति को अंत समय मिलता है, न बीमारी, न खटिया, न तड़फना, न डॉक्टर, न दवा, न किसी की सेवा। तो ऐसा कब होगा, जब हमने जीवन भर पुण्य किया होगा इस बॉडी से, तो अंत में आत्मा बिना संकल्प निकलेगी। जीवन भर का पुण्य अंत समय दिखाई देता है। और वैसे भी हम बच्चों को तो बाबा ने हर रोज प्रैक्टिस सिखा दी, क्योंकि हर रोज के जीवन में हम सुबह अमृत वेले उतर के आते हैं, हमारा जन्म है, और रात को ऊपर परम धाम जाते हैं, वो हमारी हाफ डेथ है। वैसे तो जन्म और मृत्यु का हमें बहुत अच्छा अभ्यास हो गया, लेकिन जो देह अभिमान है वो बहुत बड़ी दलदल है। और आपको पता है जब व्यक्ति दलदल में फंसा होता है ना, कोई समुद्र के किनारे दलदल होती है, और कोई दूसरा अगर उसको बचाने जाए या जो दलदल में फंसा है वो खुद हाथ पांव मारे तो क्या होता है, इसलिए उसको तो चुपचाप खड़े रहना चाहिए बस। और जो उसे बचाने जाएगा उसका भी क्या होगा, वो भी दलदल में, तीसरा गया वो भी दलदल में। तो आपको पता है जो ऐसे केस हो जाते हैं तो उसके लिए क्या किया जाता है, ऊपर से हेलीकॉप्टर आता है और ये जो दलदल वाला है ना ये अपने हाथ ऊपर करता है और जो ऊपर हेलीकॉप्टर में बैठा है वो इसके हाथ पकड़ के ऊपर खींचता है ऊपर। तो ऐसे ही बाबा ने कहा ये जो देह अभिमान की बीमारी है ना ये किसी मनुष्य के छुड़ाने से छूटती नहीं है, जो छुड़ाने जाता है वो भी फंस जाता है। देखो ना दुनिया में कितने साधु संत महात्मा आए, खुद भी फंस गए, कोई किसी का देह अभिमान छुड़ा सका? तो बाबा ने क्या तरीका बताया, मैं हेलीकॉप्टर लेके आया हूं तुम अपने हाथ ऊपर करो और मुझे पकड़ा दो। तो हमारे हाथ कौन से, हमारी बुद्धि ही हमारे हाथ, हम बाबा को अपनी बुद्धि पकड़ाते हैं और ऊपर उड़ जाते हैं और दलदल से निकल जाते हैं। दलदल है दुनिया तो बड़ी भारी दलदल, इसलिए इस दलदल में आना हमारी मजबूरी है क्योंकि सांसारिक जीवन में है, हिसाब किताब चुकतू करने हैं तो शरीर में आना तो पड़ता है, बहुत सारे कर्म इसमें बैठ के करने पड़ते हैं। लेकिन कर्म किया और फिर डिटैच हो गए, जैसे कोट पहना सर्दी लगी, आपने भी शॉल ओढ़ रखी है, कहीं ने चंडीगढ़ में नहीं ओढ़ रखी थी ना, यहाँ सर्दी लगी तो शॉल ओढ़ ली और अब चंडीगढ़ जाओगे तो फिर क्या करोगे, समेट के रख दोगे। ऐसे ही जरूरत पड़ी तो जुराब पहन ली, जरूरत पड़ी जूते पहन लिए, जरूरत पड़ी कोट पहन लिया, किचन में काम किया तो एप्रन पहन लिया, फिर जब जरूरत पूरी हो गई उतार के रख दिया। तो ऐसे ये भी है, जरूरत पड़ी तो पहन लिया और जरूरत नहीं है, बाबा ने थोड़े दिन पहले कहा था बच्चे जब कर्म करोगे तो देह में आना पड़ेगा, साकार मुरली में आया था एक हफ्ते 10 दिन पहले, कर्म करते हो तो देह के भान में आना पड़ता है, लेकिन जब कर्म नहीं है तब आप उससे डिटैच हो सकते हो। लेकिन इसके लिए बार बार प्रैक्टिस चाहिए और ये अपने को ही करनी है। बाबा ने कहा था जितनी ये प्रैक्टिस होगी उतनी बाबा की समीपता का को महसूस करोगे और जैसे ही देह अभिमान में आओगे बाबा ऑटोमेटिक दूर हो जाएगा। भक्ति में कहती हैं पंच महाभूतों से शरीर मिलकर के बना है, तो पंच भूतों के नाम मालूम है कौन कौन से हैं, जल वायु अग्नि पृथ्वी आकाश, ये पंच महाभूत, इनकी कितनी कितनी परसेंटेज है बॉडी में बताओ, पानी कितना है 70%, मिट्टी कितनी है 30%, अग्नि कितनी है 9% क्योंकि वजन नहीं है ना, वैक्यूम कितना है 9%, उसमें भी कोई वजन नहीं है, हवा कितनी है कोई खास वजन नहीं है, 0.001% वो कोई वजन नहीं माना जाता। तो 2 ग्रोस एलिमेंट है और 3 स्टल एलिमेंट है, 5 से मिलके ये बॉडी बनी है। जब आप बाजार में कोई चीज खरीदने जाते हो तो उस चीज के ऊपर भी लिखा होता है ना, जैसे आपने बिस्किट का पैकेट लिया तो बिस्किट के ऊपर क्या लिखा होता है, इसके इंग्रेडिएंट क्या क्या है और उनकी परसेंटेज कितनी कितनी है, फैट कितना है, स्वीट कितना है, इसमें चिकनाई कितनी है, और उसके ऊपर 2 बातें और लिखी होती है, कौन कौन सी, एक मैन्युफैक्चरिंग डेट और दूसरी एक्सपायरी डेट। तो ऐसे ही ये भी क्या है, ये भी क्या है, ये भी तो एक प्रोडक्ट है ना। इस प्रोडक्ट में भी पांच इंग्रेडिएंट हैं इसके, उनकी भी अलग अलग परसेंटेज है और इसकी एक मैन्युफैक्चरिंग डेट भी है ना। डेट तो इसकी एक्सपायरी वाली भी है पर वो लिखी नहीं है, वो लिखी नहीं गई। और जैसे वहां पैकेट पे लिखा होता है कि भाई एक कूल और ड्राई स्थान पे रखें, बिस्किट को आपने गिली जगह में रख दिया, गर्म जगह में रख दिया, रूप रंग बिगड़ जाएगा, कोई भी चीज हो ऐसे इसके लिए भी कुछ सावधानियां है। इसको कैसी जगह में रखो, क्या खिलाओ, अगर आपने उनका पालन नहीं किया तो एक्सपायरी, कहते ना बेस्ट बिफोर 2 मंथ्स फ्रॉम मैन्युफैक्चरिंग, ऐसे ही ये भी है भाई बेस्ट आफ्टर 70 इयर्स, बनने के 60 साल तक ये ठीक रहेगा, नॉर्मल 70 साल तक, बशर्ते कि आप इन इन बातों का पालन करो, इसको ऐसा खिलाओ, ऐसी जगह रखो। अगर आपने इनका उल्लंघन किया तो एक्सपायरी जल्दी भी हो सकती है। तो ये एक साधन है किसके लिए, आत्मा के लिए। आत्मा साध्य है, साधक है और ये उसका साधन। इसलिए हमारे शास्त्रों में लिखा है शरीरम आद्यम खलु धर्म साधनम। ये शरीर आद्यम माना सबसे पहला, खलु माना निश्चित रूप से, धर्म साधनम धर्म करने के लिए पहला साधन ये शरीर। आप पैसे से धर्म बाद में करेंगे लेकिन पहला जो धर्म कमाएंगे वो इस बॉडी से कमाएंगे, ये साधन है और ये ठीक ठाक रहना चाहिए। आत्मा जो धर्म कमाएगी, पुण्य कमाएगी, वो बॉडी से कमाएगी। और इसलिए कहते हैं पहला सुख निरोगी काया, तो इसकी महिमा भी बहुत है लेकिन कितनी भी महिमा हो आखिर तो ये एक प्रोडक्ट ही है। और प्रोडक्ट को प्रोडक्ट के रूप में यूज करने में ही फायदा है। कहते हैं जो नौकर होता है ना उसको चरणों में ही रखो, सिर पे बिठा लोगे तो उसको सिर पे बैठना तो आता नहीं, मालिक बनना तो आता नहीं। वो एक बादशाह था, वो कहता था कि एक दिन के लिए मैं अपनी राजाई दूंगा जो मुझे सुबह सुबह पुल पे मिलेगा, कहानी है ना। तो ऐसे ही एक मुस्लिम बादशाह की बात सुनाते हैं। वो बहुत प्यासा था तो बहुत संकट में फंसा था। एक भिस्ती जो वो चमड़े की चस्क होती है उसमें पानी भर के पहले ले जाते थे, मस्क उससे पानी सप्लाई होता था। तो उसने वो मस्क में पानी भरा था और उस बादशाह को पानी पिलाया था। तो उसने कहा भाई तेरे को मैं इसके बदले क्या दूं, तूने मेरी जान बचाई। तो बोला मेरे पास बड़ी से बड़ी चीज मेरी बादशाही है, मैं तेरे को एक दिन के लिए भारत की ये मुगल सल्तनत है इसका बादशाह बना देता हूं। तो उसको बादशाह बना दिया। एक दिन में ही उसने ऑर्डर निकाला कि चमड़े के सिक्के चालू करो, क्योंकि वो काम ही चमड़े का करता था, वो मस्क भी चमड़े की होती थी, उसको चमड़े से बहुत प्यार था। तो जब आप नौकर को गद्दी पे बिठाएंगे तो वो क्या करेगा, इसी तरह की योजनाओं का ऐलान करेगा। इसलिए शरीर बहुत काम का है, बहुत इम्पोर्टेंट है, लेकिन आप इसको चरणों में ही रखो, साधन बना के रखो। और मैं आत्मा साधक हूं, इस स्मृति में रहो। शरीर के माध्यम से मैं साधना कर रही हूं, आंखों से देखना भी मेरी तपस्या है, कानों से सुनना भी मेरी तपस्या है, मुख से बोलना भी मेरी तपस्या है, ये सब मेरी तपस्या है। चलते फिरते उठते बैठते एक दो को भी जब आत्मिक दृष्टि से देखते हैं तो क्या होता है, हमारी ऊर्जा उसमें जाती है। किसी को आत्मिक दृष्टि से देखना माना उसको ऊर्जा देना, और वो भी हमको आत्मिक दृष्टि से देखता है तो उसकी ऊर्जा हमारे में आती है, ऊर्जा का लेन देन है। तो बाबा से भी ऊर्जा मिलती है और आत्माओं से भी ऊर्जा मिलती है, बशर्ते कि आत्मिक दृष्टि। सारा दिन जब कार्य व्यवहार करते हैं तो कार्य व्यवहार में हमारे सामने जो भी घटनाएं घटती हैं, हम जो भी दृश्य देखते हैं, जो भी हम कर्म करते हैं, आप देखना हर एक में, बेशक लोगों को मालूम नहीं है, लेकिन क्योंकि दुनिया की शुरुआत आत्मिक स्थिति से हुई है तो आपको वो आत्मा वाला फार्मूला हर जगह मिलेगा। हम गाड़ी में बैठते हैं तो हमारे लिए नियम है, स्कूटर चलाने वालों के लिए नियम है कि भाई वो हेलमेट सिर पे लगाएंगे। अब शरीर तो नाखून से लेके सिर तक सारा ही इम्पोर्टेंट है ना, लेकिन हेलमेट पहनने का नियम, सिर में पहनने का नियम क्यों बनाया गया, बनाने वालों को नहीं मालूम, लेकिन इसलिए बनाया गया क्योंकि आत्मा जो इस शरीर की संचालक है उसका निवास यहां है। अब मान लीजिए व्यक्ति का पांव चला जाए दुर्घटना में, वो जिंदा रहेगा, बाजू चली जाए वो जिंदा रहेगा, कमर में चोट लग जाए जिंदा रहेगा, लेकिन अगर सिर में चोट लग जाए तो जैसे अपन यहां हॉल में बैठे हैं, मान लीजिए एक पत्थर बाहर से आके गिरता है और उस दरवाजे के पास गिरता है तो मैं थोड़ा शांति से बैठी रहूंगी, चलो अभी तो पत्थर वहां गिरा है कोई बात नहीं, फिर एक पत्थर बीच में आके गिरा तो मैं थोड़ी सी तो हिलूंगी, अरे ये तो बीच में मेरे नजदीक ही आ गया, लेकिन एक पत्थर सीधा इस कुर्सी को आके लगे तो मैं क्या करूंगी, उठ के भागूंगी, अब तो मैं ही निशाना हूं। तो जब चोट पांव को लगती है तो आत्मा क्या सोचती है, अभी तो काफी दूर है, मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूं, सुरक्षित। चोट जब कमर आदि में लगती है तो उसको थोड़ी चिंता होती है, थोड़ी मैं नजदीक आ गई, और अगर चोट बिल्कुल यहां लगे तो उसको लगता है अब तो मेरी कुर्सी खतरे में है, मुझे चले जाना चाहिए, तो वो झट भाग जाती है। इसलिए चोट यहां नहीं लगनी चाहिए, आत्मा बैठी रहे, बेशक पांव नहीं होंगे तो व्हील चेयर पे चलेगी, हाथ नहीं होंगे तो कुछ भी रहे तो सही, तो उसको बचाए रखने के लिए ये नियम बनाया। तो देखिए कितनी इम्पोर्टेंट है ये, कितना महत्व है, इसकी सीट का भी कितना महत्व है। व्यक्ति झुकता है तो भी कहता है हाथ जोड़ दूंगा पर सिर नहीं झुकाऊंगा, क्योंकि सिर झुका दिया माना मैं आत्मा ही झुक गई। तो मैं आत्मा, इस शरीर की मालिक, शरीर की रचयिता, इसकी रचयिता मैं आत्मा हूं, इंद्रियां मेरे अकॉर्डिंग रची गई, मेरे में शक्ति कम थी इसलिए मेरी बॉडी बीमार रची गई, अगर मेरे में यानी के बीज में ताकत बहुत होती तो ताकतवर बीज से पौधा कैसा बनता है, ताकतवर बनता है, जमीन से कितनी शक्ति खींचता है और एकदम हरा भरा रहता है, और कमजोर पीला पीला बीज होता है तो पानी डालो तो भी कोई हरा भरा नहीं होता, जितनी मर्जी खाद डाल दो भाई बीज ही कमजोर है, क्या किया जाए। तो आत्मा अगर कमजोर है तो बॉडी बीमार होगी, और आत्मा शक्तिशाली है तो सारी बीमारियों को खत्म कर देगी। इसलिए दुनिया के जो ट्रीटमेंट है उसका तरीका है कि आप बाहर से ट्रीटमेंट करो, और आध्यात्मिक ट्रीटमेंट का तरीका क्या है, भीतर से ट्रीटमेंट करो तो बाहर से सब कुछ एकदम क्योर हो जाएगा। आत्मा को जितना शक्तिशाली बनाएंगे, जितना आत्म अभिमानी स्थिति में अपनी ट्रीटमेंट करेंगे, आत्म अभिमानी स्थिति में टिक करके खाना खाएंगे, गोली दवाई खाएंगे, ऑटोमेटिक हेल्दी बन जाएंगे। एक्सपेरिमेंट करके देखना, डॉक्टर आपको छोटी सी बीमारी की 10 गोलियां देगा, 20 गोलियां देगा। एलोपैथी में ऐसा ही होता है। वो क्यों इतनी गोलियां देते हैं? इसलिए कि एक बार बीमारी पूरी तरह से चली जाए, ताकि हमारा नाम बदनाम ना हो। अरे भाई, मैंने तो गोली खाई और ये गई नहीं, अंश रह गया। तो एक बार इतना डोज खिलाओ कि अंश सहित दब जाए और पेशेंट को लगे कि वाह, ये तो जोरदार गोली थी, मैंने 10 गोली खाई और असर खत्म। लेकिन वास्तव में तो एक गोली से भी काम हो सकता था, दो से भी हो सकता था। एक्सपेरिमेंट करना। आप जब भी आप गोली खाएं, उसको दो कम से कम एक मिनट दृष्टि देना। शिव आज बाबा ने कहा ना, ज्ञान सूर्य की किरणें लेकर के आप पतित संस्कारों को भी, पतित वृत्तियों को भी बदलने की शक्ति आप में है। तो उस गोली में जैसे भी केमिकल है, वो किन उसमें क्या क्या इंग्रेडिएंट हैं, उसमें कोई पशु के इंग्रेडिएंट भी हो सकते हैं, पता नहीं गोलियां कैसे कैसे बनती हैं, कैसे कैसे केमिकल हैं। आप उसके ऊपर दृष्टि डालो, शिव बाबा की किरणें लो और एक मिनट गोली पे दृष्टि डालो, उसको सशक्त, उसका सशक्तिकरण करो। और उसके बाद आप खा के देखो, जहां 10 खुराक डॉक्टर ने दी थी, एक या दो गोली में आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। जो किरणें किसी के पतित संस्कारों को पावन बना सकती हैं, वो किरणें प्रकृति के तत्वों का भी परिवर्तन कर सकती हैं। हमारे यहाँ एक मोबाइल होता है और एक कैमरा होता है। तो जो मोबाइल होता है उसकी चार्जिंग की विधि अलग है और कैमरे की चार्जिंग की विधि अलग है। मोबाइल की चार्जिंग कैसे होती है? उसकी बैटरी उसके भीतर ही रहती है और आप उसे लगा देते हैं और चार्जिंग होती रहती है। और कैमरे की चार्जिंग कैसे होती है? बैटरी बाहर निकालनी पड़ती है और फिर उसको हम चार्जर में लगाते हैं, तब उसकी चार्जिंग होती है। तो जो मोबाइल है ना, वो भक्तों की तरह से है। भगत क्या करते हैं? भगत बैटरी अंदर ही रखते हैं और फिर भगवान को कहते रहते हैं, मुझे शक्ति दो, मुझे शक्ति दो। और ज्ञानियों की जो चार्जिंग है, वो कैमरे की तरह से, वो बैटरी को बाहर निकाल लेते हैं, फिर बैटरी को बाहर निकाल के क्या करते हैं, चार्जर में फिट करते हैं। तो हमारा चार्जर कहाँ है? वहां उसको फिट करते, और फिट भी कितनी देर करते? जब तक ग्रीन लाइट हो। ऐसे नहीं अभी रेड लाइट हुई, चार्जिंग चालू हुई और उठा लिया, तो चार्जिंग होती नहीं। अभी तो शुरुआत ही हुई थी। आप एक बात तो कर लेंगे, फोटो खींच लेंगे, फिर डिस्चार्ज हो जाएगी। तो उसको जब तक ग्रीन लाइट, इसलिए बाबा ने कहा बच्चे बार बार अभ्यास करो। अभी अभी साकारी ब्राह्मण रूप, अभी अभी आकारी फरिश्ता रूप और अभी अभी निराकारी बीज रूप। ये एक्सरसाइज, लौकिक दुनिया में एक्सरसाइज करते हैं तो हम बहुत शक्तिशाली हो जाते हैं, मसल्स बहुत स्ट्रांग हो जाते हैं, बॉडी एकदम लचीली हो जाती है। ऐसे ये रूहानी एक्सरसाइज है। अभी अभी ब्राह्मण, ब्राह्मण रूप में साक्षी दृष्टा, मैं आत्मा साक्षी होके ड्रामा को देख रही, साक्षी होके देखने ही तो आई हूं, और मेरा काम क्या है? यह जैसे नाटक को हम साक्षी होके देखते हैं ना, तो क्या करते हैं, जो सीन गई उसको दोबारा नहीं देखते, नहीं तो आगे वाली सीन मिस हो जाएगी। साक्षी होके देख रहे हैं, कोई गिर गया, ठोकर लग गई, रो रहा है, और जाने दो, आगे देखो आगे क्या हुआ। अगर हम उसी को याद करते रहेंगे, अरे वो ऐसे गिरा, ऐसे हुआ, इतनी देर में सीन निकल जाएगी। फिर दूसरे से पूछेंगे क्या हुआ था भाई, फिर वो कहेगा ध्यान से क्यों नहीं देखा। तो ये ड्रामा भी ऐसे ही है, निरंतर गतिशील जगत, जगत जिसमें निरंतर गति है वो जगत है। अब गति तो निरंतर है, लेकिन मैं क्या कर रहा हूं, पिछले सीन को पकड़ के बैठ गया, इसने ऐसे क्यों बोला, फिर ये क्यों हुआ, फिर ये क्यों किया, फिर ये कैसे हुआ। तो इतनी देर में तो इसमें कई गति हो गई, कई मोमेंट हो गई, मुझे पता ही नहीं पड़ा, मेरे काम की भी कई मोमेंट थी उसमें, पर मैं उसको पकड़ के बैठ गया तो गई मेरी एक अपॉर्चुनिटी, निकल गई। इसलिए साक्षी होके देखो, मैं ब्राह्मण साक्षी हूं, बाबा ने कहा है जैसे मैं इस जगत को देखता हूँ आप भी इस जगत को उसी प्रकार से देखो तो सदा सुखी रहोगे। ना अटक अर्थात ना अटक, किसी भी दृश्य में अटको मत, चलने दो, जो हो रहा है होने दो। भगवान ने इसमें जो भी दृश्य डाले हैं, भगवान इसका रचनाकार है, तो हर दृश्य कल्याण के लिए डाला है, क्योंकि उसका कोई भी कर्म है कल्याण के लिए है ही नहीं, सब कुछ कल्याणकारी है। तो साकारी ब्राह्मण रूप में मैं साक्षी दृष्टा हूं, और आकारी फरिश्ता रूप, वो उससे भी ऊंची स्टेज है। बाबा कहते हैं ना फरिश्ते बेहद के होते, साकार तो फिर भी हद में हूं, कोई ना कोई जाति कुल धर्म भाषा की हद है। फरिश्ता बन गया तो हदों से पार हो गया, कोई सीमा नहीं, और फरिश्ता बन गया तो ना मेल ना फीमेल, लिंग की भेद से भी पार, और फरिश्ता बन गया तो ना जब भारत का ना जापान का, देश की हदों से भी पार, और फरिश्ता बन गया तो ना दिन और रात 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 की कोई लिमिटेशन, फरिश्ते तो दिन में भी उड़ते हैं और रात में भी उड़ते हैं। तो बाबा ने कहा फरिश्ता रूप संगम युग का सबसे ऊंचा स्वरूप, देवता उससे नीचा रूप, क्योंकि जैसे ही हम सतयुग में देवताई गद्दी पर बैठेंगे, हमारी कौन सी कला शुरू हो जाएगी, उतरती कला, देवताई शरीर पहनते ही उतरती कला चालू, और अब चाहे ब्राह्मण है चाहे फरिश्ते, कौन सी कला चालू है, चढ़ती कला चालू। तो ये फरिश्ता सर्वोच्च स्टेज है पांचों युगों में, देवता बनते ही डाउनफॉल चालू। तो फरिश्ता रूप धारण करके सुख संवतन में बैठो, और फिर आत्मा को लगता है इस बंधन को भी क्यों रखा जाए, लाइट के आकार के बंधन से भी मैं छूटूं, तो फिर इससे भी ऊंची स्टेज है बीज रूप अवस्था। तो बाबा ने कहा जैसे छोटे बच्चे होते हैं ना, खेल करने में आनंद आता है, अभी जाएंगे बॉल फेंकेंगे फिर पकड़ेंगे, ऐसे ही आप बच्चे भी ये खेल करते रहो। कुछ कर्म ऐसे होते हैं जो साकारी रूप में ही पूरे किए जा सकते हैं, साकारी रूप धारण करो, साकारी रूप की जरूरत नहीं है तो फरिश्ता रूप बन जाओ, और फरिश्ते रूप की भी जरूरत नहीं है तो बिल्कुल बीज रूप अवस्था में टिक जाओ, बीज रूप बाप के साथ उसके समान बन जाओ। तो सारा दिन ये बार बार प्रैक्टिस करो। प्रैक्टिस से क्या होता है, ये जो देह अभिमान रूपी ड्रेस है ना, ये बाबा ने कहा था लूज हो जाएगी, अभी तो ये बहुत टाइट है, लेकिन बार बार आप किसी कपड़े को पहनते और उतारते हैं, पहनते और उतारते हैं, तो क्या हो जाता है, लूज हो जाती है। जब टाइट होती है तो दूसरों को कहना पड़ता है जरा खींचो ना भाई। तो जब देह अभिमान होता है तो औरों के सहयोग से, किसी की क्लास सुन के, किसी की मुरली सुन के, किसी की कमेंट्री सुन के, या दुनिया का कोई दुख देख के फिर वैराग आता है, तब आत्मा को आत्मा की स्मृति आती है। टाइट है ना ड्रेस, लेकिन जब लूज हो जाती है तो खुद ही उतार देते हैं। तो बाद में क्या होता है, अपने ही मनन से, अपने ही चिंतन से, अपने ही पुरुषार्थ से हम ऑटोमेटिक इस ड्रेस को सेकंड में उतार देते हैं। संग की जरूरत नहीं, मोटिवेशन की जरूरत नहीं, ज्ञान की भी जरूरत नहीं, क्योंकि वो भर गया ना भीतर में। तो जब चाहे ये इतनी लूज हो जाती है, पहनो उतारो पहनो उतारो, सारा दिन ये खेल चालू रहे। और जितना ज्यादा ये लूज होगी उतना ज्यादा हम चार्जर में टिक सकेंगे। दुनिया के आप जितनी भी क्रियाएं देख लीजिए, हमेशा विरोधी क्रियाओं से जीवन चलता है। अपन आंखें बंद भी करते हैं और खोलते भी हैं। सारा दिन आंखें बंद रखें तो क्या होगा, जीवन चलेगा? और सारा दिन आंखें खोल के रखें, जीवन चलेगा? थोड़ी देर बाद फिर बंद, रिलैक्स हो जाते हैं। तो सारा दिन देह अभिमान में रहें तो जीवन चलेगा? और सारा दिन आत्म अभिमानी रहे तो जीवन चलेगा? नहीं। थोड़ी देर के लिए देह की स्मृति में आए, फिर डिटैच, फिर आए, फिर डिटैच, जैसे पलकें खोली भी और बंद भी की। ऐसे श्वास का देखो, लेते भी और छोड़ते भी, सिर्फ ले ही ले, छोड़े ना, क्या होगा? दोनों काम चाहिए। ऐसे ही शरीर लिया भी और उतारा भी, लिया भी उतारा भी, धारण भी किया तो डिटैच भी हो गए, उससे जीवन सुंदर बनता है। इसलिए तो सतयुग और त्रेता का जीवन निर्विघ्न है। अब यहाँ तो लोग एक चीज की अति कर देते हैं, एक बार जन्मते ही शरीर में घुसे फिर इसमें से निकलते ही नहीं, घुसे ही रहते हैं, तो क्या होता है, वो कैद बन जाती है। इसलिए दुनिया के लोग कौन है, उम्र कैदी, जितनी उम्र उतनी कैद। और हमको बाबा ने क्या बनाया, कैद में होते हुए भी, जेल में भी कुछ ऑफिसर होते हैं ना, जब मर्जी जेल में जाओ, जब मर्जी बाहर निकल आओ। उनका मन किया बाहर बाजार में कुछ खा पी के आए तो कौन रोक सकता है, जेलर को कौन रोकेगा अगर वो बाहर घूमने चला जाए तो। जब आया अपनी कुर्सी पे बैठ गया, फिर घूमने चला गया, लंच करने घर चला गया, कहीं बगीचे में चला गया, कौन रोकेगा, वो तो मालिक है। लेकिन कैदियों के लिए रेस्ट्रिक्शन है, एक बार आए अब तुम निकल नहीं सकते। और जो केयर टेकर होते हैं वो थोड़े होते हैं, कैदी ज्यादा होते हैं। तो बाबा ने हमको क्या बनाया इस दुनिया की जेल में, केयर टेकर बनाया, थोड़े से केयर टेकर, और बाकी सबके सब। और जो केयर टेकर है उनकी कमाई है केयर टेकिंग की, वो फ्री में नहीं केयर टेकर बनते, महीने की उनको तनख्वाह मिलती है। और हम भी फ्री में नहीं केयर टेकर बने हुए, हमारी भी कमाई है, लोग गंवा रहे हैं और हम कमा रहे हैं। हम जाएंगे तो हमारा खाता भरपूर होगा। तो आत्मअभिमानी स्थिति बहुत ही ऊंची स्थिति है। बाबा ने एक मुरली में कहा था, जो आत्मअभिमानी है वो सबसे अधिक बुद्धिमान। सोल कॉन्शियसनेस इज द हाईएस्ट इंटेलेक्ट। आत्मअभिमानी स्थिति सबसे बड़ी बुद्धिमता है। और बाबा ने एक मुरली में कहा था, शिव बाबा सबसे अधिक बुद्धिमान है। क्यों सबसे अधिक बुद्धिमान है, क्योंकि आदि मध्य अंत सदा आत्म अभिमानी। आज की मुरली में भी बाबा ने कहा, शिव बाबा सबसे अधिक बुद्धिवानों की बुद्धि है, बुद्धि दाता है। शिव बाबा का जो संग करता है वो पारस बुद्धि बन जाता है। लोग कहते हैं पारस को लोहे से टच करो तो लोहा भी सोना बन जाता है। तो शिव बाबा है बुद्धिवानों की बुद्धि, हम उसके पास गए लोहे जैसे, उसको जैसे ही परम धाम में टच किया तो क्या बन गए, पारस बन के लौटते हैं। फिर टच करो, एक टचिंग से पूरे पारस नहीं ना बनते, इसलिए बार बार टच करते जाओ, थोड़ा थोड़ा लोहा बदलते बदलते, पहले तमोगुणी था, फिर तमो बना, फिर सतो बना, रजो बना, फिर सतो बना, फिर सतो गुणी बना, तो ऐसे करते करते पूरी तरह से पारस बन जाएंगे। तो यहाँ भट्टी में क्या प्रैक्टिस करेंगे, यहाँ तो मैक्सिमम टाइम हमारे पास है। देखो खाना भी हम आत्म स्थिति में खा सकते हैं, यहाँ राउंड लगाएंगे वो भी आत्म स्थिति में, और दूसरे को आत्मा देखने का अभ्यास, एकदम क्लियर दूसरे के मस्तक में आत्मा दिखाई दे, एकदम चमकती हुई मणि दिखाई दे, अपने को भी एहसास हो, जैसे अब ये एक एहसास है कि भाई मैं यहाँ इस कुर्सी पे बैठी हूं, तो मेरी कॉन्शियसनेस कुर्सी तक सीमित है, इसी तरह मेरी कॉन्शियसनेस यहाँ सीमित हो जाए, मैं यहाँ अपनी कुर्सी पे बैठी, पूरी कंसंट्रेट हो जाए यहाँ, और जब मैं अपने से पूछूं मेरा रूप कैसा है, तो मुझे अपना वो चमकता हुआ मणि जैसा रूप ही दिखाई दे, ये मेरा रूप, बाकी तो ये मेरे चारों ओर हार्डवेयर है मेरी, जो मेरी सेफ्टी के लिए, फिर मैं कौन सी आत्मा हूं। तो बाबा ने कहा इस प्रश्न के तो बहुत उत्तर है, मैं कौन सी आत्मा हूँ, सिर्फ आत्मा नहीं हूँ लेकिन मैं कौन सी आत्मा हूँ, मैं वो आत्मा हूँ जो परम धाम में बाबा के बिल्कुल करीब बैठी थी, मैं वो आत्मा हूँ जो सबसे पहले पहले बाबा से बिछुड़ी हूँ, और मैं वो आत्मा हूँ जिसने सबसे पहले भक्ति शुरू की, और मैं वो आत्मा हूँ जिसके ऊपर धरती पर आए भगवान की नजर पड़ी, तो मैं कौन सी आत्मा हूँ, वो भी साथ में स्मृति में आएगा तो बहुत आनंद आएगा। तो यहाँ सारे कारोबार से छुड़ा करके बाबा ने इसलिए बिठाया कि कारोबार में रहते जो अभ्यास नहीं हो पाते वो हम यहाँ रहते पक्के करके जाएंगे, इतने पक्के करके जाएंगे कि वो हमारी हैबिट बन जाए, हमारे संस्कार बन जाए और नेचर बन जाए नेचुरल। अभी 2 मिनट 5 मिनट अभ्यास करेंगे आत्म स्थिति का, और फिर 5-7 मिनट का हम ब्रेक लेंगे, और उसके बाद फिर दूसरी क्लास करेंगे। बिल्कुल स्थिर होके बैठ जाइए, हाथ की पकड़ी सब चीजें छोड़ दीजिए, जैसे आत्मा गीता में कहा गया है आत्मा बिल्कुल स्वतंत्र है, ऐसे स्वतंत्र हो जाइए। महसूस कीजिए मैं भ्रकुटी सिंहासन पर विराजमान हूँ, और मेरे सर्व बंधन कटे हुए हैं, बार बार अपने स्वरूप को देखिए, सिंहासन पर विराजमान स्वरूप को देखिए, हल्की लाइट माइट आत्मा सिंहासन पर विराजमान हूँ, और मेरी प्रकाश किरणें शरीर की कोशिकाओं को प्रकाशित कर रही हैं, सर्व बंधनों से मुक्त संपूर्ण स्वतंत्र देह, देह की दुनिया की स्मृति से मुक्त सर्व स्वभाव संस्कारों से मुक्त, पास्ट के चिंतन से और भविष्य की आशाओं से मुक्त, न्यारी और प्यारी मैं आत्मा इस नाटक को साक्षी होके देख रही हूँ, इस विशाल दुनिया में मैं मैं भी एक पार्ट धारी हूँ और इस गतिशील नाटक को साक्षी होके देख रही हूँ, इसका आनंद ले रही हूँ। जो हो रहा है प्रीडेस्टिन्ड नाटक के अकॉर्डिंग हो रहा है, जो हो रहा है बहुत अच्छा हो रहा है, जो हो रहा है सुप्रीम निर्देशक के निर्देशन में हो रहा है। मुझे इस जीवंत नाटक को देखने में आनंद आ रहा है। मुझे इसमें कहीं भी अटकना नहीं है। जिस गति से नाटक चल रहा है मैं भी उस गति से अपने में परिवर्तन कर रही हूँ। मैं साक्षी दृष्टा हूँ, डिटैच न्यारी और प्यारी हूँ। अब मैं आत्मा लाइट के गर्भ में द्रुकुटी सिंहासन से उड़ान भरकर फरिश्ते रूप में फरिश्ता लोक की ओर जा रही है। देह की धरनी का आकर्षण मुझे खींच नहीं सकता। इस बेहद फरिश्ता रूप में मैं बेहद सृष्टि को शुभ भावनाएं शुभकामनाएं दे रही हूँ। सकाश से सींच रही हूँ। अब इस फरिश्ता ड्रेस को सूक्ष्म लोक में छोड़कर बीज स्वरूप धारण कर मैं आत्मा हाईएस्ट लोक परम धाम में बीज रूप बाबा के सानिध्य में पहुंच गई हूँ। ज्ञान सूर्य के साथ मास्टर ज्ञान सूर्य बनकर सृष्टि को पावन किरणें दे रही हूँ। सूर्य की तरह बुराइयों का कीचड़ा भस्म कर बाबा के साथ मेरी कंबाइंड किरणें चारों ओर फैलकर बुराइयों के कीटाणु जला रही है।